आज हम भीष्मदेव की कथा का श्रवण करेंगे। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन का नाम श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है। महाजन अर्थात वो व्यक्ति जो भगवत तत्व विज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है। भगवत तत्व विज्ञान अर्थात उसको कैसे समझना है? भगवत तत्व विज्ञान अर्थात संबंध अभिनय प्रयोजन, ये तीन ज्ञान को जो पूर्ण रूप से जानता है उसको, ऐसे लोगों, ऐसे 12 लोगों को भगवान ने खुद चुना है। ऐसा नहीं है कि इन 12 लोगों के अतिरिक्त दूसरे ऐसे लोग नहीं है जो भगवत तत्व विज्ञान को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। ऐसे है लोग, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में 12 लोगों को ऐसे चुना गया है। उनमें से भीष्मदेव महाजन 12 महाजन में से एक है। तो भीष्म का चरित्र आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा, महाभारत की कथा में आप लोगों ने सुना है। तो महाभारत में आदि पर्व में संभव पर्व में, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि महाभारत में 18 पर्व में, हरेक पर्व में उप पर्व आते हैं, तो उसमें से आदि पर्व में एक है उप पर्व, संभव पर्व। कल जो मैंने ये जाति की कथा सुनाई थी वो भी संभव पर्व से ही थी। तो भीष्म पितामह की कथा उसी संभव पर्व में आती है। तो इस ब्रह्मांड में मुख्यतया दो वंश थे, एक सूर्य वंश और दूसरा चंद्रवंश। सूर्य वंश में कौन प्रकट हुए थे? अभी 2 दिन के बाद उनका प्राकट्य है, रामचंद्र। रामचंद्र सूर्यवंश में प्रकट हुए थे। और चंद्रवंश में कौन प्रकट हुए थे? कृष्ण भगवान। ये तो सरल है, इतना तो आना ही चाहिए। तो सूर्यवंश में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा थे। उन्हीं इक्ष्वाकु के एक वंशज थे, उसी वंश में पैदा होने वाले एक राजा था, सत्य पराक्रमी और सत्यवादी एक राजा थे, महान राजा, जिनका नाम था महाविश। ये महाविश ने अपने जीवन काल में 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ किए। 1000 अश्वमेध यज्ञ करना लगभग असंभव है, क्योंकि एक अश्वमेध यज्ञ भी बहुत कठिन होता है। ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ महाविश ने किए और 100 राजस्व यज्ञ। तो इन महान पुण्य की वजह से राजा महाविश स्वर्गलोक में गए, इंद्र के साथ बैठते थे। इनका पुण्य तो देखिए, ये तो इंद्र से भी बढ़ गए। इंद्र कितने यज्ञ करते हैं? 100 यज्ञ। उस कारण से इंद्र का एक नाम क्या है, कल मैंने बताया ना, कल इंद्र का एक नाम 100 यज्ञ करने से क्या होता है बताइए। कल आप सब लिखते, सब लोग थे कल। ऐसा तो नहीं कि आंख खुली रख के सो रहे हैं उल्लू की तरह, ऐसा तो नहीं है ना। शतक ऋतु, कौन बोला? यस, शतक ऋतु। इंद्र का एक नाम है शतक ऋतु। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पर्यंत 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। महाविश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उनसे भी आगे बढ़ गए। तो स्वर्ग लोक में गए थे, तो कभी कभी ब्रह्मा जी को भी मिलने के लिए जाते थे ब्रह्मा की सभा में। तो एक बार महाविश ऐसे गए थे देवताओं के साथ, ब्रह्मा की सभा में विराजमान थे। तो वहां उस समय गंगा माई भी आई, गंगा मैया का एक नाम है त्रिपथगामिनी, है ना। गंगा को त्रिपथगामिनी कहते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि वो स्वर्ग लोक में, भूमंडल में और पिल स्वर्ग में, तीनों लोक में बहती है गंगा मैया, तीनों लोक में बहती है, इसलिए उसका नाम त्रिपथगामी है, त्रिपथगामिनी है। तो गंगा मैया वहां आई ब्रह्मा जी की सभा में, वो भी बैठी हुई थी, कुछ वार्तालाप चल रहा था। अभी क्या हुआ कि हवा का एक झोंका आया, उस हवा के झोंके की वजह से गंगा मैया के वस्त्र, ऊपर के वस्त्र थोड़े हवा में उड़े, उस कारण से उनके शरीर के कुछ भाग प्रकट हो गए। ये देखकर वहां जितने भी देवता विराजमान थे वो सब लोगों ने नीचे की तरफ देख लिया, मर्यादा का पालन किया, स्त्री की मर्यादा का पालन। लेकिन महावीर गंगा से आकर्षित हुए थे, तो उनका ऐसा वस्त्र उड़ने के बावजूद भी महावीर उनकी तरफ देखते रहे। ये बात ब्रह्मा जी ने गौर की, ब्रह्मा जी को यह पसंद नहीं आया, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत महावीर को शाप दिया कि तुमने इस सभा की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो जिस गंगा से तुम अभी आकर्षित हो रहे हो उस कारण से इस सभा में विराजमान होते हुए, मेरी सभा में तुम विराजमान होते, तुम इस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस कारण से तुम्हारा मनुष्य लोक में पतन होगा, और यही गंगा जिससे तुम अभी आकर्षित हो रहे हो वही तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी, और उस कारण से तुम उसके ऊपर क्रोधित होगे, तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। तो स्वर्ग लोक में रहने वाले लोगों के लिए मनुष्य लोक में गिर जाना बड़ा भयानक है, क्योंकि स्वर्ग लोक में भौतिक सुख वैभव बहुत अधिक मात्रा में होता है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतना अधिक मात्रा में होता है वहां भौतिक सुख। ऑफकोर्स वहां से भी पुण्य कर्म जब क्षीण हो जाता है तो फिर पतन होता है, क्षीणे पुण्य मतलब कर्म विशंति, इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति स्वर्गलोक में जाने की चेष्टा नहीं करता है। बुद्धिशाली व्यक्ति क्या करता है, वो जीवन के ऐसे लक्ष्य के लिए प्रयत्न करता है जो पूरे ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने से प्राप्त नहीं होता, और वो क्या है, कौन सी वस्तु पूरे ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने से प्राप्त नहीं होती, कुछ भी करिए आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, भौतिक प्रयासों से वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, और वो है भगवान का दिव्य प्रेम। इसलिए भागवत में बोला गया है तस्य हेतु प्रयतेत कोवित न लभ्यते ब्रह्मतां उपर्यतः तं लभ्यते दुःखम तन्नेव सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसः। कोवित, कोवित का अर्थ बुद्धिशाली व्यक्ति है, बुद्धिशाली व्यक्ति ये जानता है कि जिस प्रकार से दुख बिना मांगे मिलता है उसी प्रकार से सुख भी बिना मांगे मिलेगा। कभी कोई दुख के लिए प्रयत्न करता है क्या कि हे भगवान मेरा सब कुछ टूट जाए, या मुझे कैंसर हो जाए, या मेरा घर अर्थक्वेक से टूट जाए, ऐसा कोई मांगता है? नहीं मांगता है। फिर भी ये सब चीजें होती है ना, कुछ कुछ लोगों के साथ, हर एक के साथ कुछ ना कुछ दुख में घटना होती है, कुछ ना कुछ दुख होता है, दुख बिना मांगे मिलता है। यदि दुख बिना मांगे मिलेगा तो सुख बिना मांगे क्यों नहीं मिलेगा, एक कॉमन सेंस की बात है। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति इस संसार के द्वंद्व को समझकर आगमा पायन तांसुभार, सुख दुख द्वंद्व है वो आते और जाते हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति का मन उसमें रमण नहीं करता है, वो केवल उस वस्तु के लिए, और ये जो सुख दुख है वो पूरे ब्रह्मांड में मिलते रहते हैं, स्वर्ग लोक में सुख मिलता है, नरक लोक में दुख मिलता है, भूमंडल में बीच में स्थित रहने वाले सब लोगों को उसका सम्मिश्रण मिलता है, तो पूरे ब्रह्मांड में ये सब सुख दुखादि द्वंद्व प्राप्त होते हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति उसमें अपना मन नहीं लगाता है। वो किस वस्तु में अपना मन लगाता है? जो पूरे ब्रह्मांड में परिभ्रमण कर सिर्फ प्राप्त नहीं होता है, और वो है भगवत प्रेम। इसलिए स्वर्गलोक में जाने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुण्य कर्म जिसका हो जाता है वो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो यहां महाबीज की बात कुछ ऐसी हुई। महाबीज का क्या हुआ? उस अपराध की वजह से कुछ समय तक उनको उनका पतन हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मतलब कमीशन। तो ब्रह्मा जी का यह श्राप सुन के महाबीज को बड़ा दुख हुआ और उनको लज्जा भी आया कि उन्होंने इस प्रकार से इस सभा का सभा की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो फिर वो उनका पतन उनके पतन की शुरुआत हो गई। अभी उनके पुण्य कर्म की वजह से उनके पास यह विकल्प था कि वो किसके घर पैदा होना चाहते हैं। जैसे हम में से कोई मर जाएगा तो हमारे पास विकल्प होता है क्या कि अभी मेरा नेक्स्ट बाप कौन होगा, मैं तय कर सकता हूं? नहीं। यदि मेरे पास चॉइस होगी तो मैं सोचूंगा कि बिल गेट्स का पोता बन जाऊं मैं, समझिंग लाइक दैट, जब सभी को अमीर घर में जन्म लेना। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती। हमें कहां जन्म लेना पड़ता है? जहां यमराज हमें डालते हैं अपने कर्म के हिसाब से। लेकिन महाबीज बहुत पुण्यशाली थे, उनके पास उनके पुण्य कर्मों की वजह से ये चॉइस थी कि वो कहां जन्म लेना चाहते हैं मनुष्य लोक में। तो महावीर ने देखा कि मनुष्य लोक में केवल एकमात्र राजा प्रतीक ऐसे हैं जिनके पुत्र बन सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। इस तरफ गंगा जी ब्रह्मा की सभा से वापस लौट रही थी और उस समय उनका ध्यान उनका चिंतन महाविष के बारे में था। वो पूरी जो घटना हुई उसकी वजह से गंगा को बहुत दुख हुआ कि महाविष को इस प्रकार से श्राप प्राप्त हुआ। वो महाविष का चिंतन करते हुए जा रही थी तो रास्ते में उन्हें वसुगण मिले। वसु संख्या में 8 होते हैं और वो एक प्रकार के देवता हैं। तो उनका पतन हो रहा था। गंगा जी ने देखा कि उनका पतन हो रहा था, उनका तेज क्षीण हो रहा था, उनका शरीर का रंग फीका पड़ रहा था, उनकी जो वाणी जो है उसको क्या बोलते हैं, स्लर्ड स्पीच, कंपन था उनकी वाणी में, इस प्रकार से वो गिर रहे थे। तो गंगा जी ने पूछा इन वसुगण से, अरे आप लोगों को क्या हो गया? कहीं देवताओं के ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? कहीं असुरों ने चढ़ाई तो नहीं कर दी? या कोई और कुछ कारण है जिस वजह से आप लोगों का पतन हो रहा है? वसुगण ने कहा कि गंगा मैया, हमारे पतन वशिष्ठ मुनि के श्राप से हो रहा है। वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे और हमने उनका उल्लंघन कर दिया, उनकी आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई पहले, और उस कारण से वशिष्ठ मुनि हमसे नाराज हो गया, हमें श्राप दे दिया और अभी हमें सबको मनुष्य शरीर में जन्म लेना पड़ेगा। तो वसुगण बता रहे हैं कि हमारी आपसे विनती है, हम देखते हैं कि मनुष्य लोक में कोई भी हमें अपने गर्भ में धारण करने वाली स्त्री कोई नहीं है, मनुष्य लोक में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं जो हमें अपने गर्भ में धारण कर सके, तो कृपया आप हमारी मां बनिए और हम लोग प्रतीक के पुत्र शांतनु के घर में पैदा होने वाले हैं, तो आप कृपया हमारी मां बनिए। तो गंगा मैया और कहा कि वसुगण ने कहा कि आप हमारे पैदा होते ही हमें अपने जल में बहा दीजिए, ऐसे करके हमारी श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तो गंगा मैया बोली ठीक है, ये बात तय है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिन राजा के साथ मेरा विवाह होगा, आपने बताया शांतनु, उसके लिए मुझे एक पुत्र को छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो वो वंशहीन हो जाएंगे। तो वसुगण ने बोला कि ठीक है, हमारे हर एक वसु के एक अष्टमांश अंश उनके उस पुत्र में रहेंगे, जो आपका एक एक पुत्र जो बचेगा उनमें हम आठों वसु के एक अष्टमांश अंश रहेगा, 1/8 उसमें रहेगा, उसके हमारा तेज उसमें रहेगा, वो पुत्र वहां रह सकता है और वो राजा शांतनु के वंश को सहायता कर सकता है। इस प्रकार से ये डील हो गया। उसी समय राजा प्रतीप एक बार वन में गए थे तपस्या करने के लिए गंगा नदी के तट पर। तो वो तपस्या करने के लिए बैठे थे ध्यान लगा के, कौन? राजा प्रतीप। याद रखिएगा, महाविष को शाप मिला है कि उनका मनुष्य लोक में पतन होगा और उन्होंने क्या तय किया है, वो राजा प्रतीप के पुत्र बनेंगे, उन्होंने तय किया है। इस तरफ वसु को शाप मिला है, वसु ने क्या तय किया, हम लोग प्रतीप के पुत्र बनेंगे। ये सब लिंक याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे। तो राजा प्रतीप वन में तपस्या करने के लिए गए थे गंगा के तट पे। तो गंगा नदी से गंगा माई खुद एक मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य स्त्री का रूप धारण करके वह आई। बहुत सुंदर रूप था गंगा माई का, उनके सुंदर सफेद वस्त्र धारण करके रखे थे, उनका तेज जैसे शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है ऐसे बहुत शीतल चांदनी की तरह उनका तेज था और बहुत ही सुंदर रूप था गंगा मैया। और ये गंगा जो है वो मनुष्य रूप में आई। गंगा वैसे मनुष्य नहीं है लेकिन वो मनुष्य स्त्री का रूप धारण करके आई, वो गंगा ही है स्वयं। और वो आके राजा प्रतीप के दाहिने जांघ पे जाकर बैठ गई और उस स्त्री ने वो जानबूझ के ऐसा किया, उसका रहस्य बता था। राजा प्रदीप की दाहिने जांघ पर बैठकर जाकर उसने प्रपोज किया कि आप मुझे स्वीकार करिए अपने आप, मैं आपका वरण कर चुकी हूं, आप मुझे स्वीकार करिए। तो राजा प्रतीप बोले कि मैं तो केवल अपने वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता हूं, यह मेरा व्रत है। और दूसरा यह कि तुम्हें पता होना चाहिए कि पुरुष है वो स्त्री का उपभोग करने के लिए वो बाहिने जांघ का उपयोग करता है, अर्थात स्त्री जो है उसके बाहिने जांघ पर बैठती है। आपने देखा होगा शिव पार्वती की का विग्रह देखे होंगे आप लोगों ने, पार्वती शिव जी के कहां बैठती है, शिव जी के बाहिने जांघ पर बैठती है। आज सुबह हम लोग लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर देखा, विग्रह देखे, उसमें लक्ष्मी देवी कहां बैठी थी, नरसिंहदेव के बाहिने जांघ पर। तो प्रति बोले कि रमणी का उपभोग, स्त्री का उपभोग करने के लिए वो जो स्त्री जो है वो बाहिने जांघ पर बैठी होनी चाहिए, तुमने मेरी दाहिनी जांघ का सहारा लिया है जो पुत्र कन्या और पुत्र वधू के लिए है। कोई मनुष्य कोई पुरुष के का जो पुत्र होता है या उसकी बेटी होती है या उसकी पुत्र वधू होती है वो उसके उसका स्थान दाहिने साइड पे होता है। तो तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो तो फिर तुम मेरी पत्नी तो कैसे बन सकती हो। तो गंगा मैया बोली कि वो स्त्री बोली कि आपका वंश महान है, मैं आपके वंश में ही आना चाहती हूं क्योंकि आपके आपका जो वंश है उसकी ख्याति त्रिभुवन में फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और लगातार 100 वर्षों तक मैं आपके वंश का गुणगान गाती रहूं तो भी कम है, देवलोक में भी भरत वंश के गुणगान गाए जाते हैं, इसलिए मैं तो आपके वंश में ही आना चाहती हूं। तो उसका दृढ़ निश्चय था गंगा मैया। तो प्रतीत ने बोला कि ठीक है, तुम मेरी पुत्र वधु बन सकती हो, तुम अभी तो अपने घर जाओ, मेरा जो अभी तो मेरा पुत्र उत्पन्न भी नहीं हुआ क्योंकि ये जो स्त्री थी वो दिव्य थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो उसको जैसे मनुष्य की कैसे आयु हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं लोग, वैसा टाइम फैक्टर इस स्त्री के ऊपर लागू नहीं होता था। तो प्रतिम ने बुला कि तुम्हें पुत्र वधु बन जाना, मेरे बेटे की पत्नी बन जाना। तो गंगा मैया खुश हो गए, ये बात गंगा मैया यही चाहती इनडायरेक्टली। तो गंगा मैया ने एक शर्त रखी कि आपका जो पुत्र होगा उसके साथ मेरा विवाह हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है इसके लिए कि वो कभी भी मुझे प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं कुछ भी आचरण करूंगी उसके लिए मुझे टोकेंगे नहीं, और उससे कभी भी कोई अप्रिय वचन नहीं कहेंगे। वो जिस घड़ी मुझे अप्रिय वचन कहे और मुझे टोके, मैं छोड़ के चले जाऊंगा। प्रतिम ने बोला ठीक है, ये बात मंजूर है। तो फिर गंगा मैया चली गई। अभी समय आने पर राजा प्रतिम ने गंगा तट पे जाके पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। तो उस समय उनके पुत्र में कौन उत्पन्न हुआ? राजा महाबिश। महाबिश को जो शाप प्राप्त हुआ था ना ब्रह्मा जी से कि उनको मनुष्य लोक में पतन हो जाएगा, तो इस तरह प्रतिम ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की और महाबिश उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। और महाबिश जो थे वो एकदम शांत राजा थे, इसलिए महाबिश जो थे वो प्रतिम के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो प्रतिम जो थे वो बहुत शांत राजा थे, इसलिए उनके पुत्र का नाम हुआ शांतनु। तो वो महाबिश प्रतिप के पुत्र बनकर आए और उनका नाम हुआ शांतनु। शांतनु के गुणों का वर्णन वहां किया, बहुत ही गुणवान थे, अपने पिता के अधीन रहते थे, गुरु के अधीन रहते थे, सभी क्षत्रियोचित गुण थे उनके अंदर, सत्य परायण थे, पराक्रमी थे। तो ये सब अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर, राजर्षि के जितने भी गुण होते हैं वो सब शांतनु में थे। तो समय आने पर जब प्रतीक ने देखा कि उनका बेटा भी राजा बनने लायक हो गया है, तो शांतनु को अपने पास बुलाया और बोला कि मैं पूर्व काल में एक बार जब तपस्या करने के लिए गया था गंगा के तट पर, तो एक सुंदर स्त्री आई थी और उसने तुम्हारा वरण किया, उसको मैंने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार किया और उसने ये शर्त रखी थी कि कभी भी तुम उसे कभी कोई प्रश्न नहीं करना, वो जो भी कुछ करे उसको स्वीकार कर लेना। यदि कोई तुम्हें स्त्री ऐसे भविष्य में तुम्हें आकर मिले तो तुम उसको कभी कोई प्रश्न मत पूछना, सुंदर सुंदर स्त्री तुम्हें दिखाई दे तुम्हें अप्रोच करें तो तुम उसको स्वीकार कर लेना, कभी कोई प्रश्न मत करना। तो शांतनु ने बोला ठीक है, बात मंजूर हो गई। ऐसा कहे कि फिर प्रतीक वहां से वन को चले गए। पहले के राजा लोग अपने घर में पड़े नहीं रहते थे, वो वन में जाकर तपस्या करते थे, अपने बेटे को राजा अभिषेक करके तो वन में जाकर तपस्या करते थे। तो प्रतीक चले गए और शांतनु राजा बन गए। तो शांतनु एक बार अभी राजा बन गए, बहुत ही बढ़िया वर्णन किया कि किस प्रकार से राज्य का पालन करते थे अपने। एक बार आखिर के लिए निकले, मैंने कल बताया था राजा लोग शिकार के निकले जाते थे, तो शिकार करते करते वे जंगली प्राणी के पीछे पड़े थे और बहुत थक गए थे। तो वहां से शिकार करते करते वो एक गंगा के तट पे जा पहुंचे, तो वहां घूम रहे थे गंगा तट पे शांतनु। तो उन्होंने देखा कि गंगा के जल से एक सुंदर स्त्री बाहर निकल रही है, बहुत ही अच्छा श्रृंगार था उसका, सफेद वस्त्र पहन के रखा, जैसे पहले जिस प्रकार से प्रतीप ने उसको देखा था उसी प्रकार से शांतनु ने उसको देखा। और शांतनु ने गंगा को देखा और गंगा ने शांतनु को देखा और क्या हो गया, लव एट फर्स्ट साइट दोनों में प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व काल में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। शांतनु जब ब्रह्मा की सभा में बैठे थे तब महावीर को ऑलरेडी आकर्षण हो चुका था गंगा से, था ना? ऑलरेडी वो बीज तो बो चुका, ऑलरेडी प्लांट हो गया, ऑलरेडी पहले का अनुराग है। तो वो समय आने पर वही फर्टिफाइड हुआ, वही फलित हुआ। तो गंगा और गंगा को ऑलरेडी पता है कि ये कौन है, क्योंकि वो तो दिव्य नदी है, सरिताओं में श्रेष्ठ मानी जाती है गंगा। तो शांतनु तो उससे आकर्षण गया, गंगा शांतनु से आकर्षण हो गया। शांतनु तो उस समय अपने पिता की बात याद आई, प्रतीप ने बोला था कि ऐसी दिव्य स्त्री तुम्हें मिले तो उसका वरण कर, उसको स्वीकार कर लें। लेकिन कभी भी प्रश्न मत पूछना। तो शांतनु ने कहा कि आप मनुष्य हो, गंधर्व कन्या हो, देवी हो, असुर कन्या हो, यक्ष कन्या हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपका वरण करता हूं और आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगे? तो गंगा इसके लिए राजी थी। शांतनु को नहीं पता है कि गंगा है, क्योंकि उस स्त्री ने, उस प्रतीत ने कहा था कि स्त्री का परिचय मत पूछना। इसलिए तो शांतनु ने कहा कि आप कोई भी हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिचय नहीं पूछा। गंगा ने बोला कि हाँ, मैं भी आप जैसे महान राजा की पत्नी होकर अपना बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। जरा सोचिए, भरत वंश कितना महान, नदियों में श्रेष्ठ गंगा माई स्वयं उसमें बहु बन के आई। जरा सोचिए, गंगा तो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, गंगा जी स्वयं वो भरत वंश की बहु बन के आई, भरत वंश के जो राजा थे शांतनु की पत्नी बन के आई। और उसी महान भरत वंश की कथा महाभारत में बताई है, जिस वंश का सम्मान गंगा जी स्वयं करती है, देवी होने के सरिताओं में श्रेष्ठ है, तो देवी देवताओं के लिए पूजनीय है गंगा, वो गंगा स्वयं भरत वंश का सम्मान करती है। और उसी वंश की कथा महाभारत में बताई है जिसका हम अभी श्रवण कर रहे हैं, तो ये कथा कितनी पवित्र होगी हम सोच सकते हैं। गंगा ने बोला कि यस, हम दोनों का विवाह हो सकता है, लेकिन शर्त एक है कि आप कभी भी मुझे किसी बात के लिए टोकेंगे नहीं और मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय आप मुझे अप्रिय वचन बोलेंगे या टोकेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़ के चले जाऊंगा। जो शर्त पहले रखी थी वही शर्त वापस दोहराई, ताकि शांतनु से कोई गलती ना हो, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, बात कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, तो ठीक से वापस कम्युनिकेशन में लिया गया। और शांतनु ने उसको स्वीकार कर, पिता की आज्ञा थी, प्रतीप ने बोला था कि उस स्त्री को तुम स्वीकार कर लेना, तो शांतनु ने स्वीकार कर लिया। तो शांतनु गंगा को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि परम सुंदरी थी गंगा। और गंगा मैया भी शांतनु को पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि शांतनु जैसा धर्मी राजा मिलना असंभव था पृथ्वी पर, उस समय उनके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तो दोनों में इस प्रकार से शर्त होने के बाद शांतनु गंगा को लेकर अपनी राजधानी गए। कहां? शांतनु की राजधानी कौन सी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का तो नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो हस्तिनापुर गए अपनी पत्नी को लेकर, वहां बहुत सुख चैन से रहने लगे। गंगा निपुण थी अपने पति को सुख देने में, सब प्रकार से सुख दिया शांतनु को। और इस प्रकार से जो पूर्व काल में महावीर ने जो इच्छा की थी वो उसकी इच्छा को पूरी की। महावीर आकर्षित हुए थे ना गंगा से ब्रह्मा की सभा में, तो उनका पुण्य था, उसके योग्य थे। देखिए, ये ब्रह्मा जी का जो शाप एक तरह से ठीक है शाप, लेकिन वो एक तरह से वरदान था, क्योंकि ब्रह्मा जी
उस समय तो उन दोनों के मिलन की आज्ञा नहीं दे सकते उस प्लेटफॉर्म पर स्वर्गलोक में, तो वो संभव नहीं था। इसलिए महाबीज की इच्छा, इस इच्छा को समझ के ब्रह्मा जी ने ही इस इच्छा पूर्ति के लिए उनको अलग प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तुम इच्छा पूरी कर लो, लेकिन तुम्हें उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। और उस महान अफीम और भगवान के कार्य में सहायता करने के लिए एक बेटा छोड़ के आना, ये व्यवस्था है सर, भगवान की व्यवस्था है सर, विधि का विधान है। तो शांतनु जो उनकी इच्छा थी वो इस प्रकार से गंगा ने पूरी की। तो उन दोनों एक दूसरे के साथ सहवास करते थे, रमण करते थे, तो उसमें बहुत साल महीने ऋतुएं बीत गई, शांतनु को समय का पता नहीं चला। उनका राज्य तो ऐसे शांत चलता रहता था, मंत्रियों के मंत्री उनके इतने धर्मी थे, चलता रहता था राज्य, उनका इंटरवेंशन नहीं था फिर भी चलता रहता था राज्य में। तो काफी समय बीत गया और गंगा ने सबसे पहले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पैदा होते ही गंगा ने क्या किया, लेकर गई और अपने जल में बहा दिया। ये बात शांतनु ने देखी, शांतनु दंग रह गए, उनके ऊपर जैसे वज्रघात हुआ, इतना दुख हुआ उनको, अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे कोई पानी में कौन मार सकता है, कितनी कठोर माँ होगी ये। लेकिन शांतनु कुछ बोल नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, टोक नहीं सकते, शर्त हो चुकी। शांतनु बहुत आसक्त थे गंगा से, शांतनु ने सोचा कि मैं कुछ टोक दूंगा, कुछ पूछ दूंगा, मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो बहुत आसक्त थे शांतनु, और पिता की भी आज्ञा थी कि उसको पूछना नहीं, टोकना नहीं, इसलिए उस दुख को पी गए शांतनु, कुछ नहीं बोले। ऐसे लगातार सात पुत्र हुए, वो सातों के सातों पुत्र को गंगा जल में बहाती गई, अपने ही जल में बहाती गई। तो ये देखकर शांतनु बहुत दुखी हो गए। तो इसी प्रकार से उनका फिर आठवां पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उसी प्रकार से गंगा रेगुलर जो उनका रूटीन था, और ये जो एक एक पुत्र जो उत्पन्न हुआ वो एक एक साल के अंतर में उत्पन्न हुआ, ऐसे सात साल बीत गए, आठवां साल आने पर आठवां पुत्र हुआ। तो उसको लेकर गंगा जा रही थी, उस समय शांतनु से रहा नहीं गया, वो गंगा के सामने आके बोल उठे कि हे पुत्र घातिनी, तुम कौन हो, तुम कैसी स्त्री हो कि अपने बेटे को मार डालती हो, तुम कहां से है, तुम किसकी कन्या हो कि तुम इस प्रकार से पाप करती हो। तो ये बात सुन के गंगा कुछ मुस्कुराई। गंगा ने फिर शांतनु को याद कराया कि पतिदेव हमारी शर्त थी, पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूं, मैं जहनू की कन्या जाह्नवी हूं, जाह्नवी माने गंगा, और मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप में आई हूं और आपकी पत्नी बनने के लिए आई, और आपकी भी इच्छा थी, पूर्व जन्म में आप महाबीज थे, आपको मुझे पाने की इच्छा थी, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी हुई और देवताओं का भी कार्य सिद्ध हो गया, मैं आपके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आई थी, और हमारी शर्त के अनुसार अभी मैं वापस लौट जाऊंगी। वास्तव में ये जो आपके आपने जो पूछा कि मैं अपने पुत्र की हत्या क्यों करती हूं, उसका कारण यह है कि वास्तव में ये जो आठ पुत्र जो आपके हुए वो सब वसुगण है, और वो आपो मुनि के शाप की वजह से मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। आपो, आपो माने वशिष्ठ, वशिष्ठ का एक नाम आपो इसलिए है क्योंकि वरुण देव ने उनको पुत्र रूप में अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, इसलिए उनका नाम आपो है, समझ में आया। वरुण के पुत्र होने की वजह से वशिष्ठ का नाम आपव है, क्यों ऐसा, वरुण किसके देवता है, वरुण किसके देवता है, जलनिधि पानी के देवता है ना, मेघ के देवता कौन है, इंद्र, इंद्र बारिश करते हैं, लेकिन इस भूमंडल पे जितना भी जल है पानी है, स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोरेज, उसके इंचार्ज कौन है, वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है, वरुण देव, जलनिधि, जलनिधि के स्वामी वरुण देव। जल को संस्कृत में एक नाम है आप भूमिराप मुद्दे वचनकार विभिन्ना सदा, है ना, पंच महाभूत में एक आप है, आप माने पानी। तो चूंकि वरुण देव वो जलनिधि के स्वामी है, इसलिए उनका पुत्र कौन, वशिष्ठ, उनका नाम हुआ आपव, क्योंकि वो आप यानी कि जल नदी के स्वामी के पुत्र है, इसलिए वशिष्ठ का एक नाम आपव है। तो गंगा बोले कि ये आटों को वशिष्ठ का शाप मिला था, और उस कारण से उस शाप से मुक्ति दिलाने के लिए उनको एक एक साल के अंतर पे पैदा हुए, और उनको मैं उनके साथ उन्होंने मुझे विनती की थी, जब उनका खत्म हो रहा वसुगण का, तब उन्होंने मुझे विनती की थी कि मैं उनकी मां बन के उनके शाप से मुक्ति दिलाऊं, उस कारण से मैंने आपके सात पुत्र ऐसे पानी में बहा दिए, अब वो शाप से मुक्त होकर अपने वापस अपने स्थान पे चले गए, और इन वसुओं का, आठ वसुओं को पैदा करके आपके, आपको अक्षय लोक में स्थान मिल गया, आपकी ऊर्ध्व गति होगी। वसुगण को पैदा करने वाले मनुष्य को साधारण थोड़ी हो सकता है, उसी से उनको पुण्य प्राप्त हो गया शांतनु को, बोले उसकी वजह से आपको अक्षय पुण्य लोग प्राप्त होंगे, आपकी ऊर्ध्व गति होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला था कि जिस गंगा के प्रति तुम अभी आसक्त हो रहे हो, वही गंगा जब तुम्हारे प्रतिकूल बर्ताव करेगी, जब तुम उसके लिए अपना क्रोध प्रकट करोगे, तब तुम पुनः स्वर्गलोक में लौट आओगे, बात ऑलरेडी तय हो चुकी है। तो गंगा जी बोले कि मैं ये वसुओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन उनसे मैंने आपका वंश को बचाने के लिए एक पुत्र मांग लिया था, तो ये आपका पुत्र है आठवां, अभी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसको नहीं मारूंगी, और देव का विधि का विधान ऐसा है कि ये मरने के लिए नहीं बना, क्योंकि उसको तैयार है ना, क्योंकि वशिष्ठ की बात, वशिष्ठ का शाप ऐसा ही था। तो ये जो एक पुत्र आपका जो है, उसके अंदर आठ वशिष्ठों का, आठ वसुओं का तेज है, तो वो चिरकाल तक इस धरातल पे रहेगा और आपकी वंश की रक्षा करेगा, लेकिन ये स्वयं संतानहीन होगा, ऐसा शांतनु को गंगा ने भविष्यवाणी कर दी। और गंगा मैया बोली कि अब ये छोटा बालक है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, उसको पूरी तरह से प्रशिक्षण देकर मैं पुनः आपको लौटा दूंगी, तब तक के लिए मुझे बच्चे को ले जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा करके गंगा उस छोटे बच्चे को लेकर तुरंत वहां से अंतर्धान हो गई। तो ये देखकर शांतनु, ये देखकर सुनकर बहुत दुखी हो गए, क्योंकि गंगा मैया से उनका वियोग हो गया, उसे बहुत आसक्त हो गया था। फिर ऐसे काफी समय बीत गया, चार साल बीत गए, और चार साल वाली बात बाद में आएगी, काफी समय से बीत गया। तो शांतनु एक बार पुनः आखेट के लिए गए थे, तो आखेट करते करते वो गंगा के तट पर वापस पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां गंगा का जो, गंगा की जो धारा है वो किसी कुमार ने उसको रोक के रखी है, अपने बाणों के बल से गंगा की धारा को रोक के रखी है, जैसे आजकल लोग डैम बनाते हैं ना, वैसे डैम की तरह एक कुमार था, वहां अपना शस्त्र विद्या के बल पर उसने उसको गंगा के प्रवाह को रोक दिया, धारा को रोक दिया था। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ शांतनु को, तो उस समय शांतनु ने गंगा का स्मरण किया, तो गंगा आ गई और उनके साथ एक छोटा बालक था, गंगा मैया ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा था उस बालक का, और फिर शांतनु ने गंगा से पूछा कि ये कुमार कौन है, क्योंकि जब इस प्रकार से गंगा की स्थिति देखी थी शांतनु ने, उसी समय उनको डाउट हुआ कि शायद ये मेरा बेटा हो सकता है, तो इसलिए गंगा को याद किया, गंगा उस कुमार को लेकर आई और गंगा मैया ने उसका परिचय दिया, कि महाराज ये आपका ही पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा गंगादत्त, इसका नाम होगा गंगा, या तो देवव्रत, या तो इसका नाम होगा गांगेय, क्योंकि मेरा पुत्र है और इसने प्रशिक्षण प्राप्त ये किया है, इसने वशिष्ठ से ही वेद और वेदांत का अध्ययन किया है, चार वेद और छह वेदांत उसका अध्ययन किया वशिष्ठ के द्वारा, परशुराम के द्वारा उसने अस्त्र विद्या सीखी है, बृहस्पति और शुक्राचार्य से नीति सीखे हैं, तो इस प्रकार से सभी विद्याओं में निपुण है। ये एक महान योद्धा होगा और इसके सामने देवता और असुर साथ मिलकर भी इसके सामने टिक नहीं सकते, युद्ध में उसे जीत नहीं सकते। तो ये आपके हवाले में कर रहे हैं, तो इसको आप बलिभांति अपने पास रखिए, इसका जतन करिए, यह आपके वंश को डूबने से बचाएगा, लेकिन ये पूरा जीवन संतानहीन रहेगा। ऐसा कह के गंगा जी वहां से अंतर्धान हो गई और गंगा मैया ने बताया शांतनु से कि आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे मैं आपको मिलने के लिए आ जाऊंगी। तो इस प्रकार से अभी शांतनु को कौन मिल गए, गंगादत्त देवव्रत, जो भविष्य में कौन मिलने वाले हैं, भीष्म, ये भीष्म ही। तो उसको पाकर शांतनु को जैसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई, इतने खुश हो गए शांतनु और उसको हस्तिनापुर लेकर लौट गए और वहां अपने अपने दूसरे काम में उनको राजकाज काम में उनको लगा दिया। अभी गोइंग इन रेट्रोस्पेक्ट, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, शांतनु ने गंगा से ये बात पूछी थी कि इन वसुओं को शाप क्यों प्राप्त हुआ, ये बात तो संक्षिप में बताई ना हमने। तो शांतनु ने पूछा था गंगा से कि वसुओं को क्या शाप प्राप्त हुआ था, किस कारण से वशिष्ठ ने उनको क्यों शाप दिया था, उनका पतन क्यों हुआ मनुष्य लोक में। तो गंगा ने बताया था कि ये आठ वसु एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए थे जो मेरु पर्वत के पार्श्व भाग में है, पार्श्व भाग में पीछे के भाग में, मेरु पर्वत के पीछे के भाग में वशिष्ठ का आश्रम है। तो वहां उनके पास उस आश्रम में कश्यप और सुरभि की देवी जिसका नाम है नंदिनी, सुरभि, सुरभि कौन, कामधेनु, सुरभि कामधेनु है कश्यप प्रजापति, तो उनकी बेटी नंदिनी हुई थी गाय। तो देवताओं ने उस गाय को वशिष्ठ को होमधेनु के रूप में दिया था, अर्थात उसका जो दूध घी इत्यादि जो है वो होम हवन करने के लिए, और वो कामधेनु थी, उसमें से जो वस्तु चाहे वो कोई भी वशिष्ठ मुनि प्राप्त कर सकते थे। तो नंदिनी उस वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थी। तो क्या होती है कि एक बार वसुगण अपनी 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 पत्नियों के साथ और संपूर्ण देवताओं के साथ उस वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे। तो वहां एक द्यो नामक वसु की पत्नी थी जिसने इस गाय को देखा, बहुत ही गाय बहुत सुंदर थी, तो इस गाय का वहां बहुत सुंदर सुंदर गाय का वर्णन किया है कि उसके बड़े बड़े थन थे, उसके कान बड़े बड़े थे, उसका जैसे चंद्रमा की तरह एकदम सफेद रंग की गाय, बहुत सुंदर वहां वर्णन किया है। तो नंदिनी गाय तो देखने में बहुत लुभावनी थी, उसको देखकर ये जो बच्चे वसु थे उसकी पत्नी उससे आकर्षित हो गई और अपने पति से उसको दिखाने लगी कि देखो देखो पति देखो वो गाय इतनी सुंदर है। तो द्यो ने बताया कि वो वशिष्ठ की गाय है, वशिष्ठ की होमधेनु है और देवताओं ने उसको भेंट के रूप में दिया और कहते हैं कि इसका स्वादिष्ट दूध पीने से मनुष्य 10,000 साल तक जी सकता है, 10,000 साल तक उसको मृत्यु नहीं आएगी और जब तक 10,000 साल तक उसको बुढ़ापा या रोग नहीं होगा। तो ये बात सुन के द्यो की जो पत्नी थी उसने बोला कि तो फिर आप इसको मेरे एक सखी के लिए लेकर आइए, वसु की पत्नी को इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत लंबा आयु लंबी आयु होती है उनकी और उनको रोग वगैरह नहीं होता, तो उसको अपने लिए तो नहीं चाहिए थी ये गाय। तो इसने बोला कि मेरी एक सखी है पृथ्वी लोक पे, जिसका नाम है जीतवती, जो राजा उशीनर की बेटी है। राजा उशीनर इतिहास में बहुत प्रख्यात है, उनकी बेटी थी जीतवती, वो मेरी मेरी सखी है, मैं उसको ये भेंट के रूप में दूंगी ताकि वो अकेली ही 10,000 साल जिए और उसको कभी कोई रोक ना हो, उसको मैं भेंट के रूप में देना चाहती हूँ। तो वहां कुछ वसुओं के नाम बताए, एक ऋतु नाम के वसु थे, फिर यो थे, फिर दूसरे एक तीसरा धर्म नाम का वसु था, ऐसे 8 वसु वहां विहार करे और देवता रूप में थे। तो देव ने अपनी पत्नी की बाग में आके उस गाय को चुरा लिया, उसका अपहरण कर लिया, नंदिनी का, कामधेनु का, और मति मारी गई थी। उसको चुराते समय वो भूल गए कि वशिष्ठ बहुत तेजस्वी है और इतना उनका तेज इतना है कि इस अपराध की वजह से वो मुझे गिरा भी सकते हैं मेरे स्थान से, वो भूल गए ये बात, क्योंकि विधि का विधान कहता है कि प्रारंभ बुद्धि को ग्रास लेता है। जब कुछ होनी होती है, होने वाली होती है, कुछ घटना घटने वाली होती है, तो प्रारंभ हमारी बुद्धि को ग्रास लेता है, खा लेता है, बुद्धि हमारी खत्म हो जाती है। जैसे पांडु का ऐसे हुआ था, किन्द मुनि ने श्राप दिया था कि स्त्री समागम करने से तुम मर जाओगे, फिर भी माद्री से समागम किया और मारे गए। तो जब प्रारंभ की जो घटना घटने वाली होती तो बुद्धि मारी जाती है। तो ये दियो का ऐसे ही हुआ, वो भूल गए वशिष्ठ का तेज, भूल गए, उसको चुरा के लेकर गए, लेकर के वापस चले गए। वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में लौटे, उन्होंने देखा कि बछड़े सहित नंदिनी गायब है, तो खूब ढूंढा अपने आश्रम में इधर उधर। जिस समय ये लोग अपहरण करके लेकर गए नंदिनी का, उस समय वशिष्ठ आश्रम में नहीं थे ऑब्वियसली, नहीं तो वशिष्ठ की प्रेजेंस में ऐसे दुस्साहस नहीं कर सकते। तो वशिष्ठ ने देखा कि गाय नहीं है, गायब है, तो ढूंढा इधर उधर नहीं मिली। फिर उन्होंने दिव्य दर्शन करके, दिव्य दृष्टि से देख लिया कि किसकी करतुत थी, तो सब वसु जो थे वो मिलके उसको उठा कर गए, खास करके जो यो वसु थे। तो वशिष्ठ ने श्राप दिया कि ये 8 वसु ने मेरी अनुमति के बिना मेरी संपत्ति चुराई है, जिसका मैं भगवान विष्णु की आराधना में उपयोग करता था, इसलिए इन सब का मनुष्य जीवन भी खत्म हो जाएगा, ऐसे वशिष्ठ ने श्राप दिया। तो ये इंफॉर्मेशन मिली वसुओं को, वसु डर गए, बोला हमें मनुष्य जीवन में गिरना पड़ेगा अभी, इसलिए वो गए वापस गाय लेकर वशिष्ठ के पास, उनके चरणों में निवेदन किया, बोला कि क्षमा करें गुरुदेव, उनसे अपराध हो गया बहुत बड़ा। वशिष्ठ बोले कि आप लोगों ने अपराध तो कर दिया है, ये मेरा श्राप वापस तो नहीं लौटाया जा सकता, केवल एक उपाय हो सकता है कि आप 8 में से जो 7 वसु जो है दियो के अतिरिक्त, दूसरे जो 7 वसु है, क्योंकि ये मुख्य अपराध दियो का था, तो आप 7 वसु जो है वो 1-1 वर्ष के अंतर में आपकी मुक्ति हो जाएगी श्राप से, लेकिन ये जो दियो वसु जो है उसको चीर काल तक मनुष्य लोक में रहना पड़ेगा, वो भी संतानहीन होकर। लेकिन वो सभी शास्त्र में और सभी अस्त्र में पारंगत होगा, ऐसा वशिष्ठ ने इस प्रकार से शाप को इस प्रकार से कम कर दिया। तो गंगा ने शांतनु को बताया कि उसी शाप से फिर मैंने आपके साथ पुत्र को, उसको शाप से मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए उसको मार डाला, और ये एक जो ही आपका ये पुत्र बचा है वो वही दियो नामक वसु था, और इस पुत्र के अंदर 8 वसुओं का तेज है, 1 अश्वमेध तेज है इस पुत्र के अंदर, तो ये आपके लिए महान अभ्युदयकारी पुत्र होगा, ये आपके वंश को बचाएगा, भले ही ये संतानहीन होगा स्वयं, लेकिन ये आपके वंश को बचाएगा, ऐसा कहे, ऐसे दोनों में बातचीत हुई थी। इस तरफ वापस कमिंग बैक टू द फ्यूचर, शांतनु को भीष्म देवव्रत पुत्र प्राप्त हुआ, तो बहुत पराक्रमी था, और देवव्रत का आचार, उनका व्यवहार, उनके विचार, उनका उनके अंदर गुण इतने सुंदर थे कि सब लोग उससे आसक्त हो गए, सब लोग उससे आकर्षित होते थे। पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गंगादत्त को पसंद नहीं करता था, देवव्रत को पसंद नहीं करता, सभी लोग उसको पसंद करते थे। तो ऐसे कुछ समय बीता, तो क्या हुआ कि शांतनु एक बार फिर से आखिर के लिए गए थे, अब की बार यमुना तट पे पहुंच गए, यमुना तट पे रहती थी सत्यवती। ये सत्यवती थी वास्तव में मूल रूप से राजा उपरिचर की कन्या। एक उपरिचर वसु थे, वसु ये वसु नहीं, एक वसु नाम के राजा थे जो इंद्र के बहुत पक्के भक्त थे। तो उनको इंद्र से एक आकाश में हमेशा विचरण करने के लिए एक विमान मिला था। वो हमेशा विमान में ही विचरण करते रहते थे, इसलिए उनका नाम हुआ उपरिचर वसु। तो उनकी एक कन्या थी, लेकिन रहती थी निषादराज के साथ। निषाद मैंने आपको बताया था गरुड़ की कथा में, जो मल्लाह मल्लाह होता है ना, जो नौका चला के अपनी जीविका चलाते हैं और जो मछुआरे होते हैं। तो उसका भी सत्यवती का भी कुछ प्रारब्ध ऐसा था, कन्या तो थी वो उपरिचर की राजा की, लेकिन पली बड़ी कहां हुई, इस निषाद राज के बाद। उसके पहले, इस घटना के पहले की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता अभी। तो वो सत्यवती के ऊपर शांतनु की नजर पड़ी और शांतनु पत्नी के बिना बहुत दुखी रहते थे। और उनको ये पहले के जो राजा लोग होते थे वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे और उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। तो इनके पास तो एक ही पुत्र था और पत्नी तो है नहीं अभी, इसलिए शांतनु और वैसे भी सत्यवती को देखकर और सत्यवती के शरीर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी। पराशर ने वरदान दिया था, वो कथा है शायद पिछली बार सुनाई थी जब पहले आया था मुझे। तो उसकी उसके शरीर से हमेशा बहुत अच्छी सुगंध फैलती रहती थी। तो शांतनु उसको देखकर आकर्षित हुए और उसके पालक पिता जो निषादराज था उसके पास उसका हाथ मांगने के लिए गए। तो निषादराज बोला कि ये तो हमारा महान सौभाग्य है कि आप जैसे राजा की ये मेरी कन्या पत्नी हो सकती है। तो बचपन से ही मैंने इसके लिए एक सपना देखा है कि इसका बेटा राजा बनेगा। और एक ज्योतिषी ने भी बताया था, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इसका बेटा राजा बनेगा, इसलिए तब से मैं इसको बहुत संभाल के रखा हूं इस कन्या को। तो शांतनु तो बोला कि इसका विवाह आपके साथ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका इसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो ही राजा बनेगा। तो शांतनु ने यह शर्त नहीं मानी। शांतनु बोले ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शांतनु का ऑलरेडी बेटा है, कौन, भीष्म देवव्रत। तो ये बात शांतनु को पसंद नहीं आई, इसलिए उस रिश्ते को ठुकरा के वो चले आए वापस। लेकिन उनका मन था सत्यवती में, क्योंकि सत्यवती उनको बहुत भा गई थी, बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन ये बात वो अन्याय देवव्रत गंगादत्त के साथ नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो शर्त नहीं मानी। वापस महल में लौटे हस्तिनापुर और दिन रात किसका चिंतन करते थे, सत्यवती का, खोए रहते थे हमेशा। ये बात देवव्रत ने नोटिस की, देखा कि पिताजी हमेशा खोए हुए रहते हैं, क्या बात है। तो फिर उनके मंत्री को पूछा, तो मंत्री ने बोला कि आपके पिताजी एक कन्या से शादी करना चाहते हैं। इतनी बात कह के वो चुप हो गए, तो चले गए वहां से, डिटेल में नहीं बताया। तो देवव्रत सोचने लगे ये क्या बात हुई, कुछ बात तो डिटेल में पता चले तो इसका सोल्यूशन लाओ। तो फिर वो पिताजी के पास गए कि पिताजी आपको कोई रोग सता रहा है, आपको कोई समस्या है, आप हमेशा खोए हुए क्यों रहते हैं। तो शांतनु ने बताया, हाँ मैं हमेशा खोया हुआ रहता हूं, कुछ चिंता कुछ सता रही है। बात ऐसी है कि तुम मेरी एक ही संतान हो और राजाओं के लिए कहा गया है कि एक संतान नहीं होने के बराबर है, एक पुत्र नहीं होने के बराबर है। तो यदि कल उठकर तुम्हें कुछ हो गया, वैसे तुम्हें कुछ हो नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम लेकिन होने को कोई नहीं जानता है क्या होने वाला है। तो मेरे मन में हमेशा ये चिंता सताती रहती है कि तुम एकमात्र पुत्र मेरे हो, तो तुम यदि नहीं होने तो फिर हमारा वंश आगे कैसे चलेगा। इस प्रकार से शांतनु डरते थे, डरते इन द सेंस वो बात जो निषादराज ने कही थी वो बताने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विष्णु को बताने की, क्योंकि वो अन्याय था विष्णु के साथ, इसलिए नहीं बता रहा, वो बात को गोल गोल घुमा दी। लेकिन भीष्म देवव्रत को लगा कि अभी भी बात ठीक नहीं आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो गए शांतनु के सारथी के पास जो बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि वो शांतनु उन्हीं के पास उनके रथ में बैठ के जाते थे, ये सारथी उनको वहां लेकर जाता था वहीं यमुना के तट पे। तो ये सारथी के पास गए और देवव्रत ने पूछा कि क्या मामला क्या है, तो फिर सारथी ने पूरी बात बताई कि इस प्रकार से निषाद राज के कन्या हैं जो जिसके साथ शांतनु विवाह करना चाहते हैं, और निषाद राज ने इस प्रकार से शपथ की। तो तुरंत ही ये गए देवव्रत वो सारथी को लेकर गए, और कुछ उनके साथ बूढ़े क्षत्रिय भी थे और मंत्री थे उनको, जो अच्छी मंत्र विशारद मंत्री जो अच्छी सलाह देने वाले, तो गए वहां निषाद राज के पास। तो निषाद राज तो उनको देखकर बहुत खुश हो गया, देवव्रत को देखकर कि शांतनु का पुत्र आया है, तो उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया और बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो देवव्रत ने बोला कि मैं अपने पिता के लिए आपकी कन्या मांगता हूं। तो निषाद राज बोला ये रिश्ता हमें मंजूर है, केवल कुछ इसमें अड़चन है। तो देवव्रत बोले कि क्या अड़चन है इसमें। तो निषाद राज बोला कि यही कि सत्यवती का पुत्र राजा बनना चाहिए, तो आपके होते हुए कैसे संभव हो सकता है। तो देवव्रत बोले ठीक है, यदि ये अड़चन है तो मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती का जो पुत्र होगा उसी को राजा के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं उसके अधीन रहूंगा, वो मेरा राजा होगा, मैं कभी राजा की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, ऐसे मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये बात सुनकर निषाद राज प्रसन्न तो हुए, लेकिन बोले और एक अड़चन है। बोले अब क्या अड़चन है। तो निषाद राज बोले कि आप तो ठीक है, आप तो उससे हट गए, लेकिन आपका जो पुत्र होगा उसने इस बात को नहीं माना, तो आपने मान लिया कि सत्यवती का पुत्र हमेशा राजा बनेगा, लेकिन आपका जो पुत्र होगा उसने यदि इस बात को स्वीकार नहीं किया तो क्या। तो देवव्रत बोले कि अभी मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं जो भूतकाल में किसी ने नहीं किया, भविष्य में कोई कर नहीं पाएगा। वो बोले कि सब देवता, सब साध्यगण, सब ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा, सब लोग साक्षी होकर मेरी बात सुने कि मैं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए ना ही मैं राज्य स्वीकार करूंगा और ना ही मैं विवाह करूंगा, मैं आज से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं संतान जीवन पर्यंत संतानहीन रहूंगा, ताकि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। उसमें तो यदि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं खुद राजा नहीं बनूंगा, तो फिर उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती, कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि सत्यवती का ही पुत्र राजा बनेगा। तो ये बात सुनकर निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। अपने बाप के लिए सेक्रीफाइस, एक तो पहले राज्य छोड़ दिया, दूसरा वो तो छोड़ दिया, बोले कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। कौन बेटा ऐसा व्रत ले सकता है अपने बाप के लिए, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो ऐसा अखंड व्रत भी है। तो निषाद राज सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वाहवाह करने लगे। जिस समय देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली तो भीषण प्रतिज्ञा थी, इसलिए आकाशवाणी हुई, बोले गंगाधर तुम्हारी इस भीषण प्रतिज्ञा की वजह से तुम अब से भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तो सब लोगों ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की आकाश लोक से। निषाद बोले कि ठीक है, अभी तुम इस कन्या को लेकर जा सकते हो। तो भीष्म बोले भैया चलिए अपने घर चलिए। तो लेकर आए सत्यवती को और शांतनु को सौंप दिया। शांतनु ये बात देखकर एकदम अचंभे में पड़ गए, बोले ये कैसे हुआ। तो भीष्म ने पूरी बात बताई। ये बात सुनकर शांतनु को हर्ष भी हुआ और महान दुख भी हुआ। हर्ष सत्यवती को पाकर हुआ, लेकिन महान दुख क्यों हुआ कि मेरे कारण मेरे बेटे ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ले ली। तो इस बात से मिश्रित हर्ष और दुख उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद वो भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न थे शांतनु। और बोले कि तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो मैं भी तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं हो, मृत्यु तुम्हें अपने अधीन नहीं कर सकती। तुम कभी मृत्यु के अधीन नहीं हो सकते, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम जीवित रह सकते हो। तो इस प्रकार से शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो हम जानते हैं कि भीष्म पितामह तो फिर काफी पीड़िया रहे, आगे तो कथा बहुत लंबी चलती है। फिर अर्जुन के हाथ उनको बाण से यहाँ पे सना पड़ता है ना, वो महाभारत के युद्ध में बात आती है। तो इस प्रकार से ये भीष्म वास्तव में एक महान वैष्णव थे, शुद्ध कृष्ण भक्त थे। तो भागवत पुराण में पहले स्कंद में उन्होंने जो कृष्ण की स्तुति की थी वो वर्णन मिलता है, और महाभारत में भी जो भीष्म ने कृष्ण की स्तुति है वो मिलती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः, ने भीष्म के ही गाया हुआ श्लोक है। और भी बहुत लंबी चौड़ी स्तुति है, भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति की थी कृष्ण की। तो ये कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। जो वसु थे पहले वशिष्ठ के शाप से, अभी उनको कृष्ण भक्ति मिली है ना। देखिए वशिष्ठ का शाप कितना अभ्युदयकारी हुआ वसु के लिए। जो वसु अपनी स्त्रियों के साथ रमण करता था, भौतिक भोग विलास में पड़ा रहता था, वो व्यक्ति को वशिष्ठ के शाप की वजह से कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। यहां इस वंश में आए तभी तो कृष्ण से मुलाकात हुई, कृष्ण की भक्ति की है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ खुद वैष्णव है, महान वैष्णव है। तो वैष्णव ब्राह्मणों का शाप भी अभ्युदयकारी होता है, उसे भी कल्याण होता है। जैसे नारद मुनि नल मणि ग्रीव का भी ऐसे हुआ था। तो ये भीष्म का महान चरित्र है। तो ऐसे महान लोगों के चरित्र से भरपूर है महाभारत ग्रंथ। तो भीष्म पितामह तो आगे बहुत सारे काम किए थे, फिर आगे भरत शुभ रहा था क्योंकि शांतनु और सत्यवती की संतान हुई, फिर चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को स्वर्गलोक के गंधर्व चित्रांगद ने मार दिया, बाकी रहे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के लिए भीष्म पितामह तीन काशीराज की कन्याओं को अपहरण करके लाए थे, अंबिका अंबालिका, जिसमें से अंबा शल्यराज को चाहती थी तो वापस चली, भीष्म ने उसको वापस भेज दिया था। अंबिका और अंबालिका के क्षेत्र से, अंबिका और अंबालिका के भोग में पड़ गए ये कौन विचित्र विद्य, तो जवानी में मर गए, संतान भी मर गए, तो वंश डूब रहा था। उस समय सत्यवती ने भीष्म की सलाह ली। भीष्म बहुत चतुर थे, सभी धर्म के सिद्धांत जानते थे और बुद्धिशाली थे। भीष्म ने उस समय बताया कि नियोग विधि से इस वंश को बचाया जा सकता है। तो नियोग विधि से फिर सत्यवती का जो पहला बेटा क्या नाम था, वेद व्यास, तो सत्यवती वेद व्यास को बुलाते हैं। फिर विचित्र विदर का क्षेत्र, विचित्र विदर के क्षेत्र कौन, अंबिका और पालिका में वेद व्यास ने दिव्य पद्धति से धृतराष्ट्र और पांडु को पैदा किया। और उनकी जो अंबिका की जो दासी थी उससे विदुर उत्पन्न हुए, आगे की बात तो आपको पता है, धृतराष्ट्र से कौरव हुए, पांडु से पांडव हुए, पांडु के क्षेत्र में पांडव हुए, क्योंकि पांडु ने स्वयं को संतान पैदा नहीं कर पाया, लेकिन पांडु के क्षेत्र कुंती और मात्री से देवताओं ने पुत्र उत्पन्न किए। कुंती के तीन पुत्र उत्पन्न हुए, धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीमसेन और इंद्र के अंश अर्जुन, और माद्री ने एक ही बार से दो निशान मार दिए थे, क्योंकि शर्त ऐसी थी कि कुंती का दिया हुआ जो मंत्र था वो माद्री एक ही बार उपयोग कर सकती है। इसलिए माद्री ने क्या किया था, अश्विनी कुमार जो हमेशा जोड़े में रहते ट्विंस हैं, उनका आवाहन किया था और उन अश्विनी कुमार से सहदेव नकुल को प्राप्त किया था। तो यह है भीष्मदेव का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त में बताया। उनका पूर्व जन्म के बारे में मैंने आपको बताया कि वास्तव में वो वसु थे और इस प्रकार से धरातल पे आए थे, और फिर तो महान वैष्णव बन गए और उन्होंने भरत वंश को डूबते हुए से बचा लिया था। और इवन दुनियावी दृष्टि से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से भी आप देखें, तो भीष्म पितामह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम नहीं किया। आप ये बात समझ सकते हैं, भीष्म ने अपने लिए क्या किया जीवन में? कुछ भी नहीं। उनका खुद का इंटरेस्ट क्या था? कुछ भी नहीं। द टोटल लाइफ वॉज सेक्रीफाइस। भीष्म का पूरा एक जीवन बलिदान था दूसरों के लिए। इवन दुनियावी दृष्टि से देखें, उसमें डीप में नहीं जाए तो भी दिखाई देता है कि वो दूसरों के लिए भी जीवन। पांडवों का बाह्य दृष्टि से देखा जाए, हालांकि पांडव भी भगवान के लिए ही काम किए, जो भी किए, पांडव का भी कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन बाह्य दृष्टि से, दुनियावी दृष्टि से देखे तो पांडव का अपना स्वार्थ था। बाह्य दृष्टि से देखे तो वैसे वो भगवान के कहने के लिए किए, जो भी किए, धार्मिक रक्षा के लिए किए, लेकिन जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो ऐसे बोलेगा कि हाँ पांडव का तो स्वार्थ था। उसी तरह से कौरवों का भी स्वार्थ था, सभी का कुछ ना कुछ स्वार्थ था। जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो जिसकी बुद्धि तेज नहीं है, उस व्यक्ति को पूछो भीष्म का क्या स्वार्थ था, वो बोलेगा भीष्म का कोई स्वार्थ नहीं था। इवन फ्रॉम द मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू, दुनियावी दृष्टि से भी भीष्म पितामह का जो पूरा जीवन था वो दूसरों के लिए बलिदान। इसलिए महान चरित्र है। और सबसे बड़ी बात तो वो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, 12 महानंद में से, तो उनका चरित्र हमें सुनना चाहिए महाभारत से, श्रीमद् भागवत से, उससे हमारी आत्मशुद्धि होगी। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की, महामुनि व्यास की, श्री प्रभुपाद की।